ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय तो यह कथा चल रही है कि माधवेन्द्रपुरी रमुना में पहुंचे और उन्हें इच्छा हुई खीर खाने की और मांगते नहीं थे तो श्री भगवान ने गोपीनाथ जी ने सपना दिया पुजारी को। सपना में कहा कि हे पुजारी उठो और मेरा द्वार खोलो, यहां मैं सिंहासन के पास अपने धोती से ढक करके धोती के छोर से लुकवा करके छिपा करके एक बर्तन खीर रखा हूं। माधवपुरी नामक एक सन्यासी हैं, बाजार में कहीं हैं, उनको ये दे दो। तो पुजारी उठा और देखा सचमुच के एक पात्र खीर भगवान चुरा करके रखे हैं, तो उसको लिया, बाहर गया, दरवाजा बंद किया और फिर माधवेन्द्रपुरी को खोजने लगा। तो वे बाजार में बैठे थे, नाम कीर्तन कर रहे थे, तो उनसे पूछा आप माधवेन्द्रपुरी है? नहीं, उसने कहा किसका नाम माधवेन्द्रपुरी है? तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम है। तो पुजारी ने कहा कि आपके लिए गोपीनाथ जी खीर चुराए हैं, आपको देने के लिए कहे हैं, आप लीजिए इसको, आपके समान इस तीनों लोक में कोई भाग्यवान नहीं है, धन है आप, निश्चित ही आप ऐसे योग्य व्यक्ति हैं, इसी कारण से श्री कृष्ण आपके वश में हैं। तो माधवेन्द्रपुरी उस खीर को खाए, खाने पर उन्हें प्रेम विकार होने लगा। यही भावना हो रही थी कि भगवान मेरे लिए खीर चुराए। भगवान का इस प्रकार का व्यवहार भक्तों के प्रति सदा होता रहता है। तो मूर्ति के रूप में भगवान खीर चुराए और खिलाए। माधवेन्द्रपुरी ठाकुर उस बर्तन को, उस पॉट को खंड खंड तोड़ लिए, पहले धोए और धोकर खंड खंड तोड़ लिए और बहिर्वास में बांध लिए। एक एक टुकड़ा रोज खाते थे, खाने पर प्रेम का विकार होता था, गाते थे, नाचते थे, रोते थे, भगवान के प्रेम की बात याद करते। फिर उस दिन रात में सोच रहे थे, ठाकुर मोरे खीर दिलो लोक सब जानी, दिने लोक भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। ये पुजारी मानेगा नहीं, जरूर कहेगा कि माधवेन्द्रपुरी के लिए भगवान गोपीनाथ खीर चुराए। दिन में यह बात फैलेगी तो बहुत लोग आएंगे मेरी प्रतिष्ठा जानकर मुझसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये तो हमारे भक्ति में प्रेम अंतराय है, अतः अब यहां से भागना चाहिए। तो रात्रि के शेष में वे भाग गए, भोर में भाग गए, मंगलारती भी भाग नहीं लिए। मंगलारती में ही हल्ला हो जाता है। ये सन्यासी के लिए भगवान खीर चुराए, तो इससे प्रतिष्ठा को बहुत बुरा मानते थे। उठ करके चल दिए, सही भय रात्रि से उठिला श्रीपुरी, सही खाने गोपीनाथ दंडवत करे। भोर में भगवान गोपीनाथ को प्रणाम किए, अभी पट खुला नहीं था, और चल दिए। चली चली आईला पुरी श्रीपुर नीलाचल, चल चल करके श्री माधवेन्द्रपुरी नीलाचल आए, जगन्नाथपुरी आए। तो जगन्नाथ देखी हैला प्रेमी के विहवाओ, श्री जगन्नाथ जी को देख करके वे प्रेम में विह्वल हो गए। अद्भुत प्रेम विकार माधवेन्द्रपुरी में होता था। तो प्रेमावेश उठे पड़े, हासे नाचे गाय। प्रेमावेश में कभी उछलते थे उठते थे, और कभी पड़े मूर्छित होकर गिरते थे, और कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, कभी उच्च स्वर से गाते थे। जगन्नाथ दर्शन महासुख पाए, श्री जगन्नाथ जी को देख करके उनको परम आनंद मिल रहा था। माधवपुरी श्रीपाद आइला लोके हैला ख्याति, सब लोक आशी तारे करे बहु स्तुति, करे बहु भक्ति। इस बात का प्रचार हो गया, पहले से उनको लोग जानते थे जगन्नाथपुरी में कि माधवेन्द्रपुरी आए हैं, लोके हैला ख्याति, लोक में ख्याति हो गई, प्रचार हो गया। और यह भी प्रचार हो गया कि इनके लिए भगवान खीर चुराए, अभी हाल की घटना है, दो तीन दिन की। कटक में ही भगवान रहते थे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी कितना दूर है रमुना से, 3-4 दिन का रास्ता होगा, 160 किलोमीटर। चल चल कर आए तो वहां बहुत लोग जुटने लगे और इनको प्रणाम करने लगे, भक्ति करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगते विदित, जेना वांछे तार है विधा तर निर्मित निमित। प्रतिष्ठा का ये स्वभाव है। वैष्णव जन चाहते नहीं है प्रतिष्ठा, लेकिन प्रतिष्ठा पीछा छोड़ती नहीं है, प्रतिष्ठा हो ही जाती है। ये प्रतिष्ठा के भय से भागे, जगन्नाथपुरी गए तो वहां तक की खबर फैल गई थी, खबर पहुंच चुकी थी माधवेन्द्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराया। और घटना नहीं सुनाया, ये बात नहीं मालूम थी कि गोपाल जी ने सपना में कहा था निकालने के लिए जमीन से झाड़ी से, ये सब पता नहीं था किसी को। लेकिन इस बात का पता हो गया था कि इनके लिए भगवान ने खीर चुराया। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगते विदित, जस मिलना होता है, प्रतिष्ठा मिलनी होती है, तो इसका स्वभाव है जगत में विदित है। जेना वांछे तार है विधा तर निर्मित, जो नहीं चाहता है प्रतिष्ठा, फिर भी भगवान की का ऐसा विधान है कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका जस बढ़ ही जाता है। तो प्रतिष्ठार भयपुरी गेला पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया, गड़ाइया के पीछे लगी रहती है। कृष्ण भक्ति करने पर प्रतिष्ठा पीछे पीछे चलती ही, और छोड़ती नहीं है यदि भक्त नहीं चाहता है। प्रतिष्ठार भयपुरी गेला पलाइया, प्रतिष्ठा के भय से पूरी भाग गए, मधवेन्द्रपुरी भाग गए थे वहां से, श्री चरण गोपीनाथ। लेकिन प्रतिष्ठा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अपने आप कर रहे थे, ये भगवान का विधान है। यद्यपि उद्वेग हैला पलायते मन, ठाकुर चंदन साधन हैला बंधन। तो जगन्नाथपुरी से भी भागना चाहते थे, लेकिन ये बंधन था उनके प्रति। भगवान के लिए गोवर्धन में चंदन ले जाना था, भगवान ने कहा था कि मेरा ताप बहुत बढ़ा हुआ है, और आप जाइए, आप चंदन लाइए, मलयगिरी का चंदन। लेकिन चंदन के लोभ से वे रुके थे, सीमित पथ पर चलना था, एकांत में भाग नहीं रहे थे, चंदन नहीं लाना होता भगवान की सेवा के लिए तो कहीं एकांत में भाग गए होते, तो वहीं रुके रहे। जगन्नाथ है सेवक जत, जते का महांत सभा के कहिला पूरी गोपाल वृतान, सभा के कहिला। तो जितने बड़े बड़े लोग भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में थे, मंदिर के अधिकारी पुजारी आदि सब, अभी चंदन प्राप्त करने के लोभ से, भगवान गोपाल को शीतलता देने के लोभ से सबसे कहे कि ये वृतांत सुनाए, सारा वृतांत कि गोपाल जी हमको दूध दिए पीने के लिए और सपना में आकर कहे कि हम यहां पड़े हुए हैं निकालो, और इसके बाद कहे कि हमारे शरीर का ताप बढ़ा हुआ है, हमको मलयज चंदन चाहिए, इसी के लिए मैं आया हूं, इसमें हमारी सहायता कीजिए आप लोग। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में मलयगिरी के चंदन बहुत थे, वहां रखे रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, जगन्नाथ जी की सेवा के लिए। तो वे लोग सुने इस वृतांत को तो बहुत प्रसन्न हुए, और वहीं पर उनको सारा चंदन मिल गया। उधर केरला में नहीं जाना पड़ा, उतना दूर जाकर के लाना था, लेकिन जब इन्होंने चर्चा किया, इसी लोग से चर्चा की कि यहां भी जगन्नाथ जी को रहता है और जगन्नाथ जी ही मांगे हैं, उन्हीं का चंदन उन्हीं को देना है गोपाल जी को, जब चर्चा किए तो लोग बहुत प्रसन्न हुए। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, आनंद चंदन लागी करी लज्जत। जब ये लोग सुने कि गोपाल जी एक मूर्ति थे, जो लोग कथा पहले नहीं सुने हैं वे लोग जान रहे हैं, एक मूर्ति थे, पूरी कथा तो कहने का यहां समय नहीं है। मलेच्छों के भय से पुजारी गोवर्धन पर्वत से उतार करके इनको एक झाड़ी में रख दिया था, कुछ गड्ढा करके रख दिया था, तो वहां कोई मलेच्छ गया नहीं, उससे रक्षा हुई। तो जब माधवेन्द्रपुरी जी गए थे अन्य और गोवर्धन में, तो परिक्रमा किए और गोविंद कुंड पर रुके थे, संध्या का समय था, कुछ इनको नींद नहीं, दिन में ही थोड़ी सी झपकी आई, तंद्रा आई, तो एक लड़का नहीं, पहले की कथा है, ये अयाचित व्यक्ति थे, मांग करके कुछ खाते नहीं थे, अपने आप बिना मांगे जो मिल जाता था वही खाते थे। एक बालक आया और मटका में दूध लेकर के आया और कहा कि ये दूध पी लो बाबा। मधुरपुरी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बच्चे का सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गए, लेकिन वो बिल्कुल गोपाल जैसे बात किया, ग्वाले जैसे, कहा कि इसको पी लीजिए और हमें गाय दुहने का समय है, गाय दुहाने के लिए जा रहा हूं और दूसरी बार आकर के बर्तन ले जाऊंगा। तो मधुरपुरी ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ गांव है और तुमको कैसे पता लग गया कि मैं भूखा हूं और मैं मांगता नहीं हूं। तो गोपाल ने कहा, लड़के ने कृष्ण ने, मेरा नाम गोपाल है, मेरा नाम श्री गोपाल है और मैं इसी गांव में रहता हूं, ये कहे और कैसे तुमको पता लग गया कि मैं भूखा हूं। तो कहे कि यहां पानी भरने के लिए कुछ स्त्रियां आई थी, पानी लेकर के गई तो हमसे उन लोगों ने बताया कि एक साधु वहीं पर बैठा हुआ है, लगता है कि खाया नहीं। ये सब जोर जाड़ कर कह रहे, सर्वज्ञ भगवान के लिए कहने की जरूरत नहीं थी स्त्रियों को कि वहां आया है, लेकिन उत्तर इस तरह से दिए कि स्त्रियों ने हमसे कहा कि वहां एक सन्यासी आया है, भूखा है, बैठा है एकांत में गोविंद कुंड पर, तो उन लोगों ने दूध इकट्ठा किया, दूध दिया तो मैं लाया। अब एक सन्यासी के लिए क्या कई गोपियों को दूध देना पड़ेगा? कहीं से दूध नहीं लिए थे, अपने घर से दूध लाए थे यशोदा जी के यहां से। तो आप पी लीजिए, फिर मैं बर्तन ले जाऊंगा। इतना कह करके वो लड़का समय ही नहीं दिया और कुछ नहीं, वो तो चला गया। तो चकित हो गए, वास्तव में भगवान थे। तो मधुरेन्द्रपुरी फिर दूध को पिए और बर्तन धो करके रख लिए, वो आएगा तो ले जाएगा। लेकिन वो कहें को आने जाए, फिर तो बर्तन को फिर खंड खंड करके और एक एक टुकड़े खाने लगे, बहुत स्वाद आ रहा। एक दिन वे सपना देखे कि वही बालक जो दूध लेकर के आया था, वो कह रहा है कि मैं यहां बहुत दिन से पड़ा हूं कुंज में, झाड़ी में, मुझे कभी भोजन नहीं मिला कई दिन से, मैं भूखा हूं, रहने के लिए कोई घर नहीं है, घाम सह रहा हूं, वर्षा सह रहा हूं, आंधी सह रहा हूं, जाड़ा सह रहा हूं। तो हे माधवेंद्र, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, कब आप आएंगे मेरी सेवा करेंगे। तो बहुत दिन प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सेवा करेंगे, आप हमको वहां से निकालिए और हमारे लिए घर बनाइए, मंदिर बनाइए, जहां मैं सुख से रह सकूं। उन्होंने बनाया। इसके बाद गोपाल जी ने दूसरी बार सपना दिया कि मैं, मुझे जो घाम लगा है अभी मेरे शरीर का ताप गया नहीं है, आप हमारे लिए। तो माधवेन्द्रपुरी चले हैं भगवान की सेवा करने के लिए, केरला जाने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा था कि तुम सपना में कि नीलाचल के रास्ते से जाना। तो पहले से प्लान था कि इनको नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में मलय चंदन मिल जाएगा। तो भगवान की आज्ञा से चले, पहले शांतिपुर गए, अद्वैताचार्य जी को दीक्षा दिए और इसके बाद पहुंचे, चलते चलते रेमुना रास्ते में पड़ा। तो वहां से चले हैं, फिर वहां भगवान ने इनके लिए खीर चुराया। तो प्रतिष्ठा के भय से भाग गए, जगन्नाथपुरी में आए। जगन्नाथपुरी में सब लोग इनका बड़ा सम्मान किए और इन्होंने अब उस भगवान की सेवा के लिए खुल करके बात कही कि हमें गोपाल जी ने कहा है चंदन लाने के लिए, तो कुछ चंदन का प्रबंध कीजिए आप लोग। तो ये लोग बहुत प्रसन्न हुए। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, आनंद चंदन लागी करी लज्जतन। जतन के मने चंदन लोग जहां तहां स्टॉक था तो लिए। राजपत्र सने जार जार परिचय, तारे मांगी कर्पूर चंदन करिला संचार। राजपात्र मतलब मंत्री से, जगन्नाथपुरी के जो राजा के अधीन रहते थे, तो उनसे कह करके ये लोग, जिसका जिसका परिचय था, सब लोग कर्पूर और चंदन मांगे, संचय किए। चंदन ही नहीं, कर्पूर, चंदन को और सुगंधित करता है। तो एक विप्र एक सेवक चंदन बहिते पूरी गोसाई के संगे दिला संबल सहित। एक ब्राह्मण दिए वे लोग जगन्नाथपुरी से माधवेन्द्रपुरी को, एक ब्राह्मण दिए जो, और एक सेवक जो चंदन एक मन लेकर के चलेगा। तो उन लोगों ने आग्रह करके कहा कि आप इसको रखिए और ले जाइए, और कुछ संबल भी दिया। संबल का मतलब होता है कुछ पैसा दिया, रास्ते के खर्च के लिए, कहीं टोल टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, कहीं नदी पार करना होगा, भार लेकर के नदी पार करना होगा तो नौका का फीस लगेगा ना। इस तरह से चले घाटी दानी छड़ाई थे राजपत्र द्वार द्वारे राजलेख करी दिला पूरी गोसाइन करे। और राजा के द्वारा एक पत्र मिला कि इनसे कहीं भी कोई टैक्स ना लिया जाए, राजा ने लिख करके दिया। तो क्या कहें, सर्टिफिकेट दिया ये भगवान की सेवा के लिए जा रहा है, इस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जहां जहां दानी लोग थे, दानी का अर्थ दान लेने वाले, जहां भी टैक्स का स्थान था, जैसे देखते हैं ना हाईवे पर कहां कहां सब लगता रहता है, तो इसे दानी कहते हैं। दानी माने दान लेने वाला, दान देने वाला नहीं। बहुत दानी लोग हैं और कई जगह बना हुआ है टोल टैक्स। चलिला माधवपुरी चंदन लैया कत दिने रेमुनाते उत्तरी लगिया। अब चल दिए वृंदावन के लिए, गोवर्धन के लिए चंदन लेकर के, तो कुछ दिन में रेमुना पहुंचे, गोपीनाथ जी के यहां पहुंचे। देखिए भगवान की कृपा, एक तो चंदन में दिलवा दिए जगन्नाथपुरी में, भक्त के परिश्रम को वे कम कर रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ठाकुर तैयार थे जाकर के केरला से, वहां मलय गिरी है, वहां से चंदन लाऊंगा, लेकिन भगवान ने बीच में दिलवा दिया। अभी गोपीनाथ मंदिर में आए, गोपीनाथ चरणे कैला बहु नमस्कार, प्रेमावेश नृत्य गीत करिला अपार। गोपीनाथ जी के मंदिर में आए क्षीर गोपीनाथ, तो वहां बहुत बार नमस्कार किए और प्रेम के आवेश में खूब नृत्य किए और गीत गाए, प्रेम के आवेश में। पूरी देखी सेवक सब सम्मान करी लो, क्षीर प्रसाद दिया तारे भिक्षा कराई ला। इस बारे लोग बिना मांगे ही इनको खीर दिए। अच्छा अयाचित वृत्ति थे तो वो लोग जानते थे, एक पुजारी ने प्रचार किया होगा, तो अपने आप खीर प्रसाद दिए सुखाए। सही रात्रि देवालय करी ल शयन, शेष रात्रि हरिले पूरी देखी ल स्वपन। उस रात वहीं सोए, देवालय में ही, बाजार में नहीं, कोई रूम होगा इधर उधर जैसे गेस्ट हाउस रहता है या कुछ, तो भगवान के मंदिर में शयन किए और सपना देखे। गोपीनाथ सपने में गोपाल जी प्रकट हुए, गोवर्धन वाले। सही रात्रि देवालय करी लो शयन, शेष रात्रि हैले पूरी देखी लो स्वपन। भोर में सपना देखे, प्राय भोर का सपना सच्चा होता है, देखे कि वही गोपाल प्रकट हुए। गोपाल आसिया कहे सुना है माधव, गोपाल सपना में प्रकट हुए और कहे हे माधवेंद्र सुनो, कर्पूर चंदन आमी पाई लाम सौ। आप जो ला रहे हैं चंदन इतना भारी और कर्पूर, सब मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मैं पा गया। कर्पूर चंदन आमी पाई लाम सौ, कर्पूर सहित यदि ये सब चंदन गोपीनाथ के आगे दीते करह लेपन। मैं तब समझू मैं ही पा गया कि आप चंदन के साथ, कर्पूर के साथ चंदन को घिस घिस करके और गोपीनाथ के शरीर में लेप करेंगे तो सब मुझे समझे मैं पा गया, क्योंकि हम में और गोपीनाथ में भेद नहीं, मुझ में और गोपीनाथ जी में भेद नहीं। भगवान ने कहा गोपीनाथ आमार से एक ही अंग है, यहां के चंदन दिले हमें मोर ताप छाए। यदि गोपीनाथ जी को चंदन लगाएंगे, लेप करेंगे, तो मेरा ताप चला जाएगा। हमारा और उनका शरीर एक ही है, एक ही अंग है, कोई भेद नहीं है। द्विधा न भावी हो न करी हो किछु मने, विश्वास करी चंदन देह हमारा बचन है। अब इसमें संदेह मत करो, सपना में भगवान कह रहे हैं, इसमें संदेह मत करो, मन में कुछ शंका मत करो, विश्वास करके चंदन दो गोपीनाथ जी को। हमारा बचन है, मैं कह रहा हूं गोपीनाथ जी और हम एक ही हैं, हमारा देह एक ही है, उनको चंदन देने से हमें शीतलता मिल जाएगी। इस तरह से भगवान ने कहा। एतब बलि गोपाल गेला गोसाई जागीला, इतना कह करके गोपाल चले गए, फिर सपना टूट गया माधवनपुरी ठाकुर का। गोपीनाथ के गोपीनाथेर सेवकगण डाकिया आनेला, तो फिर माधवनपुरी गोपीनाथ जी के सेवकों को बुलाए और रात में जो सपना हुआ था वह सुनाए। तो आप लोग ऐसी व्यवस्था कीजिए, वो कहे कि प्रभुर आज्ञा हैला ए कर्पूर चंदन गोपीनाथेर अंग नित्य कर हल्ले पर। भगवान ने कहा है, गोपाल जी ने कहा है कि चंदन जो लाया गया है, इस चंदन और कर्पूर को घिस करके और इसका लेप गोपीनाथ जी के देह में करना है, आप लोग कीजिए और मैं रहूंगा, जब तक ये चंदन चलेगा तब तक मैं घिसेंगे सब लोग और मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। ये पुजारी को कहे कि आप इसको लगाओ, गर्मी का महीना आ चुका था। यह के चंदन दिले गोपाल है बे शीतल स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रभाव। यहां चंदन गोपीनाथ जी को लगाने से गोपाल जी का शरीर शीतल होगा, ये उन्होंने कहा है, तो ये सारा चंदन गोपीनाथ जी को लेप हो जाना चाहिए। अच्छा, गोपाल जी को शीतल करना है ना। ग्रीष्म काले गोपीनाथ परिबे चंदन सुनी आनंदित हैला सेवक केर मन। मदनपुरी ठाकुर ने कहा कि अब गर्मी का मौसम आ ही गया है, तो पूरा गर्मी पूरे ग्रीष्म ऋतु में गोपीनाथ जी को ये चंदन लगाया जाएगा। तो ये बात सुनकर के सेवक बहुत प्रसन्न हुआ है, भगवान का पुजारी था गोपीनाथ जी का, बहुत प्रसन्न हुआ। पूरी कहे ए दुई घसी वे चंदन, मेरे साथ जो दो आदमी आए हैं ये चंदन घिसेंगे और आर जन्म दुई देह दिवस से वेतन, ये दो तो चंदन घिसे गए, आर जन दुई देह और दो व्यक्ति और हमको दीजिए। पुजारी से कहे इस मंदिर से संबंधित दो भक्त और चाहिए जो इस काम में सहायता करें, इनके लिए मैं वेतन दूंगा, इनका सेवा खर्चा जो भी है मैं दूंगा, वेतन दूंगा। मैं दूंगा मतलब तो पैसा छूते नहीं थे, लेकिन जो ब्राह्मण आए थे वो साथ में रखे थे पैसे, जगन्नाथपुरी से राजा के सचिव ने दिया था। यही मत चंदन देह प्रत्यह घर घिसिया पराया सेवक का सब आनंद करिया। तो इस तरह से इनको सब चंदन लगाना है। इस बात को सुनकर के पुजारी बहुत प्रसन्न हुआ, रोज चंदन घिसना चालू हुआ। चार चार आदमी काम करते थे घिसने का और आनंद से गोपीनाथ जी का सेवक पुजारी उनको लेप कर रहा था। प्रत्यह चंदन पराय जावत हैला अंत, जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक प्रतिदिन चंदन का लेप होता था। वो चंदन यात्रा बहुत बृहद थी क्योंकि गोपाल जी को ताप था, ये ताप काहे को था, अपने भक्त की सेवा को स्वीकार कर रहे थे। प्रत्यह चंदन पराय जावत हैला अंत तथा रहिला पूरी तावत पर्यंत, और जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक माधवेन्द्रपुरी वहीं थे लेप होता। ग्रीष्म काल अंते पुनः नीला चले गेला, नीला चले चतुर्मास से आनंद रहिला। गर्मी का मौसम खत्म हुआ, जब चंदन खत्म हो गया तो माधवेन्द्रपुरी फिर नीलाचल आ गए, फिर जगन्नाथपुरी। और चतुर्मास में चार महीना, सावन भादो कुवार कार्तिक, कार्तिक प्रबोधनी एकादशी तक और हरिशयनी एकादशी, ये आषाढ़ है शुक्ल पक्ष की एकादशी, तो हरिशयनी एकादशी कहते हैं, जिस दिन भगवान शयन करते हैं क्षीर समुद्र में, और फिर जगते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी को, प्रबोधनी एकादशी को, इसको चातुर्मास कहते हैं। इसमें विशेष नियम होते हैं भगवान के भक्ति पर, एक स्थान पर रह करके सन्यासी लोग, भगवान के भक्त लोग भगवान का विशेष कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, तो चातुर्मास वहीं रहे। श्रीमुखे माधवपुरी अद्भुत चरित, भक्त गणे सुनाया प्रभु करे आस्वादित। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के लेखक कहते हैं कि भगवान चैतन्य महापुरुष स्वयं अपने मुख से माधवेन्द्रपुरी ठाकुर के इस चरित्र को सुना रहे हैं, अपने मुख से, और सुना करके भक्तों को आनंदित किए। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगत। नित्यानंद को संबोधित करके चैतन्य महाप्रभु कहे नित्यानंद जरा विचार कीजिए, माधवेन्द्रपुरी के समान भाग्यवान इस तीनों जगत में कोई नहीं है। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे दिखा दिलो, दूध देने के बहाने कृष्ण जी को दर्शन दिए अपने आप। देखिए माधवेन्द्रपुरी का भाग, अपने आप भगवान दर्शन दिए। दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल, जिनको दिखाई दिए, दर्शन दिए। तीन बार स्वप्ने आसी जार आज्ञा कैला, तीन बार सपना में आए, एक बार तो प्रत्यक्ष आए दुध देने के लिए गोविंद कुंड पर, और तीन बार सपना दिए भगवान। एक बार तो सपना दिए कि हमको निकालो, यहां मैं बहुत दुख पा रहा हूं, खाया नहीं हूं, निकाले। तो दूसरी बार सपना दिए कि हमारा ताप नहीं जा रहा है, हमें चंदन चाहिए। और तीसरी बार सपना दिए कि हम में और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, यही चंदन दे दो। तीन बार सपना में आए और एक बार प्रत्यक्ष आए। लेकिन आप सपना में सुनने का प्रयास मत कीजिए, जग करके सुनिए। सपना में भगवान नहीं आएंगे, जागृत में तो आ रहे हैं, कान में प्रवेश कर रहे हैं। तो तीन बार सपना में आए और एक बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जार प्रेम बस हैया प्रकट हैया हैला, सेवा अंगीकार करी जगते तारीला। जिनके प्रेम के बस में होकर के भगवान गोपाल, आज जिनका नाम श्रीनाथ जी है, जो श्रीनाथ द्वारा में है उदयपुर के पास, तो प्रकट हुए। अब प्रकट होकर के मूर्ति के रूप में प्रकट हुए और सारे जगत को तार रहे हैं। जो भी दर्शन करता है, सेवा करता है, तर जाता है। जार लागे गोपीनाथ क्षीर कैला चूरी, और जिनके लिए गोपीनाथ जी खीर चुराए, अतएव नाम हैला क्षीर चोरा हरी, क्षीर चोरा करी। जिनका नाम है क्षीर चोरा पड़ गया भगवान का नाम। भगवान को ये चोर कहा जाए तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है, ये बहुत प्रिय नाम है। उनको कहिए हे जगदीश, हे जगन्नाथ, कृपा करो, मैं पतित हूं, तुम पावन हो, ठीक है, ये भी अच्छा है, प्रार्थना है। ओम जय जगदीश हरे, ये भी ठीक है। लेकिन उनको यदि माखन चोर कहा जाता है तो बहुत खुश होते हैं, नाम मेरे प्यारो माखन चोर। अब तो माखन चोर नाम था या खीर चोर नाम है। उसी समय से तो जिनके लिए भगवान खीर चुराए, जाल लागे गोपीनाथ क्षीर कैल चूरी अतएव नाम हैल क्षीर चोरा करी कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाईल आनंद पूरी गोसाई प्रेम उछली। और गोपीनाथ जी के अंगों पर अंग पर उन्होंने चंदन चढ़ाया भगवान की आज्ञा से, तो माधवेन्द्रपुरी का प्रेम और उछल रहा था, बढ़ रहा था। म्लेच्छ देश से कर्पूर चंदन आनीते जंजाल, पूरा उत्तर भारत में म्लेच्छों का शासन था, उड़ीसा तक तो ठीक था लेकिन बंगाल और बिहार यूपी सब जगह म्लेच्छ भर गए थे। तो म्लेच्छ देश से कर्पूर चंदन आनीते जंजाल, बहुत कष्ट का काम था, म्लेच्छों का शासन था सब जगह, वे रोक रहे साधु फाधु कुछ नहीं समझते हैं, राक्षस हैं म्लेच्छ, जंजाल था लाना, बहुत कष्ट का काम था। पूरी दुख पावे यह जानिया गोपाल, तो गोपाल ये जान गए कि मधुरनपुरी को बहुत कष्ट होगा आगे चंदन ले जाने में, तो महादयामय प्रभु भगत वत्सल चंदन करी भक्त प्रेम करीला सफल, चंदन परी तो सपना दिया कि गोपीनाथ में हमने भेद नहीं है क्योंकि गोपाल परम दयामय है भक्त वत्सल है, तो उस चंदन को वहीं स्वीकार कर लिया रेमला में, जिससे कि आगे मधुरनपुरी को कोई कष्ट ना हो। इस तरह से उन्होंने जीवन सफल किया। पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार अलौकिक प्रेम चीते लागे चमत्कार, नित्यानंद प्रभु यावत सबको संबोधित करते हैं, दृढ़ विचार कीजिए पुरी माधवेन्द्रपुरी में कितना प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, प्रेम की पराकाष्ठा है, अलौकिक प्रेम चीते लागे चमत्कार, अलौकिक प्रेम है, ऐसा प्रेम सुना गया न देखा गया, इस तरह का प्रेम है। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, ऐसे विरक्त थे माधवेन्द्रपुरी, विरक्त मौनी अन्य कोई बात बोलते नहीं थे, सर्वत्र उदासीन केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करते थे और सब जगह से उदासीन थे, किसी से कोई मतलब नहीं था। ग्राम वार्ता भय द्वितीय संगहीन, कोई ग्राम वार्ता गांव की या समाज की कोई चर्चा न करे, इसके लिए ये कभी कोई वैष्णव साथ में नहीं रहते थे, द्वितीय संगहीन अकेले घूमते थे। लेकिन इनका प्रेम देखिए, हेना जन गोपाल आज्ञा मृत पाइया सहस्र कोष आशी बोले चंदन मांगिया, ऐसा विरक्त सन्यासी भगवान गोपाल की आज्ञा का पालन किया, आज्ञा मृत पाया, भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा दिया इनको, और ये हजारों कोष पैदल चले, इधर से जाना उधर से आना, भगवान की सेवा के लिए सुख के लिए चंदन में लाने गए थे, तो हजारों कोष चले। लोक भय तबु अन्न मांगी अन्न खाए, नहीं भूखे रहे, भूखे रहे तबु अन्न मांगी अन्न खाए, भूखे रहते थे कभी अन्न मांग कर भोजन मांग करके नहीं खाए। हेना जन चंदन तार वही लिए जाए, और ऐसा सन्यासी चंदन टांग करके जा रहा है एक मन, बीच बीच में वो खुद उठाते थे चंदन, सेवक था लेकिन सेवक को नहीं छोड़ दिए थे, बारी बारी से वो ब्राह्मण और ये और बारी बारी से धोते हुए आते थे। ऐसा व्यक्ति जो कभी मांगता मांग करके नहीं खाया और भगवान के लिए इतना दुख सहा, हेन जन चंदन भार वही लिया जाए, चंदन का भार है मने का चंदन, चंदन एक मन था लगभग 40 किलो के करीब, और कितना दूर से लाना था, पैदल लाना था। मने का चंदन तोला विषे का कर्पूर, और 20 तोला कर्पूर था, व्यक्तिगत सुख स्वच्छंद कथा विवेचना न करे, व्यक्तिगत अपनी कोई चर्चा नहीं करते। मधुरपुरी प्रायः एक मन चंदन काष्ठ एवं 20 तोला कर्पूर वहन करे निये। गोपाल पराइब ए आनंद प्रचुर, क्यों भार मालूम नहीं होता था उनको, क्यों कष्ट नहीं मालूम होता था, क्योंकि एक विचार में थे कि गोपाल को चंदन लगाऊंगा, इस आनंद से और कोई दुख उनको प्रतीत नहीं होता था, न भूख न प्यास और न चलने का कोई कष्ट, परम आनंद में थे ये इस भावना से कि मैं गोपाल को चंदन लगाऊंगा। उत्कल दानी रखे चंदन न देखिया, तहां चढ़ाई लाज पत्र दिखाइया। शुरू से ही उड़ीसा में ही कई दानी थे, दान लेते थे, टैक्स लेते थे, जब रुकते थे तो राजपत्र और सर्टिफिकेट दिखाते थे। म्लेच्छ देश से दूर पथ जगत या पार, कीमत चंदन मिल नहीं है विचार। दूर देश जाना है, वृंदावन में गोवर्धन में जाना है, बीच में म्लेच्छों का बहुत समाज, कैसे ले जाऊंगा चंदन, इसका विचार ही नहीं किया उन्होंने, कभी सोचा ही नहीं। संगे एक वट नहीं घाटी दान दीते, तथा तो उत्साह बड़ चंदन ले जाए। लेकिन इनके पास कोई एक कौड़ी भी नहीं थी, एक कौड़ी, अब तो कौड़ी चलती नहीं है। हम लोग उस समय याद है कौड़ी जब खेलते थे तो एक आना में एक पैसा में 20 कौड़ी मिलती थी। एक आना मतलब रुपए का 16वां भाग, उसको एक आना कहते हैं, 16 आना जैसे कहते हैं पूरा रुपये, तो एक आना का 20 कौड़ी मिलता था। बच्चे सब खेलते रहते थे कौड़ी, कभी कभी खेलते थे। एक कौड़ी नहीं थी घाटी दान दीते, घाटी दान देने के लिए टोल टैक्स नहीं था, तथा तो उत्साह बड़ चंदन ले जाए, फिर भी उत्साह था चंदन ले जाने में, चंदन ले जाने के लिए उत्साह था। गए पैदल, गए पैदल ही, कोई ट्रेन वेन तो जाती नहीं थी जो दिल्ली से त्रिवेंद्रम जाए, कोई ऐसा ऐसे ट्रेन नहीं था, कोई ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, पैदल जाना था। लेकिन विचार नहीं किया, एक पैसा भी नहीं था, लेकिन भगवान की आज्ञा के लिए तैयार हो गए। तो श्री भगवान ने प्रेरणा किया उड़ीसा के पुरी के राजा के मंत्री को, उन्होंने पत्र लिखकर दिया और कुछ पैसा दिया। ये अर्थ है, अपने पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्ना दिल ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का यही स्वभाव है कि अपने व्यक्तिगत दुख और विघ्न आदि का विचार नहीं करता है, कभी सोचता ही नहीं। प्रगाढ़ प्रेम का यह स्वभाव है, प्रेम नहीं होगा तो आदमी नहीं जाएगा चंदन लाने के लिए, नहीं जाता। प्रगाढ़ प्रेम था माधवेन्द्रपुरी ठाकुर का। यही तार गाढ़ प्रेम लोके दिखाई थे, गोपाल तरे आज्ञा दिल चंदन आनी थे। उनके इसी प्रगाढ़ प्रेम को जगत में दिखाने के लिए भगवान गोपाल ने उनको आज्ञा दिया चंदन लाने के लिए। वही में कहा कि कोई शीतलता ताप का प्रश्न नहीं था, वास्तविक बात नहीं थी कि गोपाल जी बहुत तप्त हो गए थे, लेकिन अपने भक्त का प्रगाढ़ प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला किया। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना अनिल आनंद बाढ़िला माने दुख न गणिला, बड़े प्रेम से वे आए थे रेमुना तक। तो परीक्षा करीते गोपाल कैल आज्ञादान, परीक्षा करिया से हैल दयावान। तो गोपाल ने परीक्षा लिया माधवेन्द्रपुरी ठाकुर की, ये चंदन लाते हैं कि नहीं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, चंदन लेकर के आए। यह परिश्रम देख करके माधवेन्द्रपुरी ठाकुर का भगवान दयामय हो गए, दया से पिघल गए। तो यही भक्ति, भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझीते वो आमा सवार नहीं अधिकार, दयावान हुए, कह दिए कि चंदन यहीं दे दो, हमें और गोपीनाथ में भेद नहीं है, यही दया। इस भक्ति और भक्त प्रिय कृष्ण के व्यवहार को हम लोग समझने की चेष्टा करके भी नहीं समझ पाएंगे, हमारा इसमें अधिकार नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहो या कृष्णदास कविराज को स्मरण करो, ऐसा भगवान का चरित्र है, ऐसी भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति विरक्त सन्यासी अयाचित वृत्ति वाला भगवान की सेवा के लिए इतना परिश्रम करने के लिए तैयार, इस संसार में इस भक्ति को समझना कठिन है। प्रायः सन्यासी का मतलब लोग समझते हैं सब काम धाम छोड़ करके स्रोत कहीं पड़ा हुआ है, चाहे जगह भी है तो बैठा है, तो उसको सन्यासी लोग समझते हैं, है ना, इस संसार में है। लेकिन ये सन्यासी देखिए कि भगवान की सेवा के लिए इतना दूर जाना, इकट्ठा करना, कष्ट सहना, ये असली सन्यास भगवान की सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी भी एक सन्यासी थे, 69 वर्ष की अवस्था में अमेरिका गए, क्योंकि गुरु ने आज्ञा दिया था कि अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो उस दशा में अब 70 वर्ष की अवस्था एक अक्षम अवस्था होती है, इनवायलेट शरीर हो जाता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा उत्साह था कि वे एक स्त्री से प्रार्थना की, उसकी कंपनी थी, जल का जहाज जाता था अमेरिका कलकत्ता से, तो बॉम्बे में रहती थी, हमने भेंट किया है उस माता जी से, प्रणाम किया, जिसके जहाज पर प्रभुपाद जी गए अमेरिका, सुमति मुरार जिसका नाम, मंदिर के पास ही समुद्र तट पर रहती थी। तो उसने कहा कि स्वामी जी हमारे पास मालवाही जहाज है, माल जाता है, कोई मनुष्य की सवारी नहीं जाती है, बहुत टाइम लग जाएगा और मैं आपको परमिशन नहीं दूंगी, क्योंकि आपको भेजने का मतलब है कि आपकी हत्या का पाप हम पर लगेगा, आप इस बूढ़े शरीर में अब वृंदावन में रहिए, आराम कीजिए, क्यों जाएंगे। उसने कहा, एक बार तो पूरा जवाब दे दिया, तो श्रील प्रभुपाद जी दूसरी बार गए उसको कलकत्ता में, दूसरी बार गए, कहे कि किसी तरह से मुझे भेजो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं भगवान का काम करना चाहता हूं। तो एक सन्यासी की प्रार्थना सुन करके उसने कहा, टाल नहीं सके, अंत में उनको सिर दे दिया। माल ढोने वाला जहाज जिसमें केबिन छोटा ही होता है, कुछ ही लोग उसमें रह सकते हैं, तो प्रभुपाद जी उस पर चढ़े और 2 महीने में कि 1.5 महीने में पहुंचे, बोस्टन पहुंचे सबसे पहले, बोस्टन अमेरिका में बिल्कुल पूरब है, पूरब में है ना, हाँ बोस्टन। तो वहां ये देखे जब अमेरिका के लोगों की दशा, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना लिखे हैं, कृष्ण किस काम के लिए हमको भेजे यहां पर, किला की अनिला है था कर गति, किस लिए हमको भेजे, वो काम कराइए। यहां जब देख रहा हूं लोगों की दशा, तो सभी परम विषयी मांसाहारी और क्या क्या दुर्गुण सब में। एक बार तो प्रभुपाद जी निराश हो गए, तो भगवान कृष्ण से डायरेक्ट कहे हैं, प्रार्थना है कि मैं एक कठपुतली हूं और आप सूत्रधार है, जैसे नचाएंगे वैसे नाचूंगा, लेकिन हमको शक्ति दीजिए आप। तो ऐसे विचार कर रहे थे तब तक भागवत का चार श्लोक पांच श्लोक उनको याद आया, श्रीमताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय तस्थ ये भद्राणी विधुमतु सुहेक्षता नष्ट पाये सभद्र सु नित्यम भगवत सेवया। ये सब श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा आश्वासन मिला। सूत जी कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है ध्यान से, तो उसके हृदय के सारे दुर्गुण दोष निकल जाते हैं, निकल जाता है और भगवान में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। इस बात से बहुत आश्वासन मिला। प्रभुपाद जी ने वह श्लोक सब लिखा है। इसके बाद एक जगह रहते थे, ऐसे जगह रहते थे, एक अग्रवाल जी थे जो भारत के थे, मथुरा के, उनसे पहले से थोड़ा परिचय था, तो उस घर में गए। अग्रवाल परिवार था लेकिन पूरा पाश्चात्य सभ्यता से ग्रस्त हो गया था। रहने के लिए वो लोग स्थान दिए, परंतु ये लोग मांस खाते थे। प्रभुपाद जी बहुत सहे हैं, ये कहीं फ्रिज में एक स्तर पर मांस रखा जाता था, उसके दूसरे स्तर पर प्रभुपाद जी अपना भोजन रखते थे। ये दिन बिताया है उन्होंने, साल भर कुछ भी प्रचार नहीं हुआ। रहते थे, लेक्चर देते थे गीता पर, एकाध व्यक्ति कोई कोई आता था, कुछ प्रचार नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में न्यूयॉर्क में प्रवचन किया, कीर्तन का प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रोग्राम पार्क में, तो वहां पर जो पहले से आते थे सब आए, सब लोग आए। प्रभुपाद जी ने बहुत कम लोगों को दीक्षा दिया था, उसमें जब आए कीर्तन हुआ तो अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में छपा कीर्तन के विषय में, सब डांस डांस शब्द था, डांस हुआ वहां पर, हर एक सन्यासी नचा रहा था सबको। इसके बाद कई लोग आने लगे, तो साल भर के बाद श्री प्रभुपाद जी ने एक संस्था की स्थापना किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, पहला केंद्र हुआ न्यूयॉर्क। और इसके बाद भगवान कृष्ण की कृपा से फैलने लगा। श्री प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा किया सैन फ्रांसिस्को में, उस रथ यात्रा में इतने लोग आए कहा नहीं जा सकता। आप कभी वीडियो देखेंगे, लोग भागे हुए आ रहे हैं शहर से। जगन्नाथ जी की कृपा से वो पहला प्रचार कहा जाए तो था सैन फ्रांसिस्को में, रथ यात्रा, बहुत लोग, कई हजार आदमी आए उसमें रथ यात्रा में भाग लेने। उसके बाद हर एक साल रथ यात्रा होने लगी और अब सभी शहरों में रथ यात्रा होती है, बल्कि एक एक शहर में कई कई जगह होती है रथ यात्रा फैली, कीर्तन प्रचार और बुक प्रिंटिंग, बुक बांटना, किताब, ये सब आज इतना विशाल रूप लिया है इस्कॉन। किसका किया हुआ है? एक वृद्ध सन्यासी का। इसको कहते हैं भक्ति और भगवान से प्रेम। भक्त अपने सुख दुख का विचार नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी माधवेंद्रपुरी की ही परंपरा में हैं। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी पाद, और इसके बाद चक्रवर्ती पाद आदि आते हैं। ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर और उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज और उसके बाद परम पूज्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये इनका जस है। भगवान ने इनके भाग्य में लिखा था कि यही व्यक्ति ज्ञान का दीपक जलाएगा सारी दुनिया में। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग इस परंपरा में हैं और प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ी कुछ भक्ति कर रहे हैं। मध्वेन्द्रपुरी का ये जो जीवन है अद्भुत है, भगवान की सेवा के लिए उनका जीवन था, न कि घर से काम धंधा से छुट्टी होकर संन्यास ले ले और जाकर कहीं मठ में आराम करे, इसको भक्ति नहीं कहते। प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है, प्रचार करो प्रचार करो, जितनी शक्ति है उतना करो। बहुत उत्साहित करते थे हमसे। जब उन्होंने कहा एक बार, मैं वृंदावन में था तो श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन देने के लिए बैठे श्रीमद् भागवत का, तो मैं भी बैठा था, मैं कोने में छिपा हुआ था कि हमको देख लेंगे तो जरूर बुलाएंगे। तो मैं कोने में था मंदिर में अपने, तो प्रभुपाद जी राधा माधव गाए और गा करके भागवत खोलने के पहले कहते हैं उसको बुलाओ। तो सब भक्त देखने लगे, विदेशी भक्त किसको बुला रहे, किसको बुला रहे, वो गोरखपुर वाला। प्रभुपाद जी से मैं गोरखपुर में ही ज्यादा दिन मिला था, तो हमारे नाम नहीं बोलते थे, गोरखपुर वाला कहते थे। भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार के साथ में था तो 10 दिन प्रभुपाद जी का सामना किया था, लेक्चर सुना था, तो यही कहते गोरखपुर वाला। तब तो हमको काठ मार गया कि अब हम क्या करें। बुलाए तो मैं गया धीरे धीरे। तुम गए नहीं? कहां जाए? अवश्य प्रभुपाद जी ने कहा था हमको कि तुम प्रीचिंग करो, तो मैं प्रीचिंग का मतलब नहीं जानता था। प्रीचिंग का मतलब उपदेश जानता था, प्रचार नहीं जानता था, उपदेश करो, उपदेश करो। तो हमने कहा कि भगवान कहता था, भगवान उसमें प्रभुपाद जी भी कहता था, प्रभुपाद में जो आप कहे उसका अर्थ नहीं जानता हूं। क्या कहा था? आपने कहा था प्रीचिंग करने के लिए, मैं उसका अर्थ नहीं जानता। तो सीधा उन्होंने कहा जो पढ़ते हो उसको कहो, प्रीचिंग का यही मतलब है ना, भगवान के बारे में जो जानते हो सुने हो पढ़े हो उसको कहो, यही आदेश था। उनकी कृपा से फिर मैं कथा कहने लगा और उन्होंने कहा था कि बनारस में मेरा प्रोग्राम बनाओ, तो बनारस में कुछ भक्तों को कह करके कुछ वहां के विद्यार्थियों को मैं प्रोग्राम सेट किया। तो उस समय श्रील प्रभुपाद जी भारत में थे ही नहीं, तो विदेश में प्रचार करते थे, बहुत ज्यादा व्यस्त जीवन था। हमने कहा भी कि प्रोग्राम सेट किया था आप नहीं थे, वहां मैं चला गया था। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हम लोग हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। समस्त भक्तों की आचार्यों की शक्ति आती है, भक्ति करने की सुविधा मिलती है, ये बहुत गौरव की बात है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में हैं, रूप गोस्वामी पाद के अनुगत। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य है कि हम लोग प्रभुपाद जी के अनुगत सेम परंपरा में। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।